हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 9 और 10। इस आध्यात्मिक ज्ञान को अध्ययन एवं श्रवण करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। आज हम श्लोक नंबर 9 और 10 का पाठ करेंगे। बहुत ही सुंदर और सारग्रहित यानी तत्व को का मर्म, जीवन का मर्म बताने वाले उसके वास्तविक जीवन हमें जो ये प्राप्त हुआ है उसके अंदर जो पुरुषार्थ एक मनुष्य को करने हैं वो किस लिए किए जाते हैं और क्या लाभ है, वास्तव में जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन का क्या पुरुषार्थ है, मनुष्य को संसार में आके क्या करना है और क्या किस लिए करना है। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, तो कृपया मेरे साथ साथ इस पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूची कहते हैं, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्था योपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। इसके साथ श्लोक नंबर 10 में पहले इसका शब्दों का अर्थ देखेंगे। धर्मस्य अर्थात वृत्ति का, वास्तव में यहाँ पर धर्म को वृत्ति क्या कहा गया कि जो धर्म है ना, जैसे हमारा जो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्तव्य है ना उसको धर्म कहा गया, यानी कि जो अपने अपने वर्ण और आश्रम को एकदम परफेक्टली कर रहा है उसको धर्म कहा गया। यहाँ पर भक्ति उसका अर्थ नहीं है, भक्ति आगे जाके आएगा। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, अब यहाँ पर कह रहे हैं निश्चय ही अपवर्गस्य, यानी धर्म आप कर रहे हो उसका लक्ष्य क्या है, अपवर्ग है कि आपको अपवर्ग तक, निश्चय ही धर्म का, धर्म किसके किया जाता है, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। नार्थ नहीं, अर्थ मतलब अंत, लक्ष्य अर्थाय भौतिक लाभ के लिए, यानी कि आप धर्म को भौतिक लाभ के लिए नहीं करते हो। धर्म से ह्यापवर्गस्य नाथोर्थायोपकल्पते, उपकल्पते का मतलब होता है साधन के हेतु, यानी कि भौतिक अर्थाय का मतलब होता है भौतिक लाभ के लिए साधन के हेतु, यानी कि जो आप धर्म कर रहे हो उसके बदले में आपको अपवर्ग मिलना चाहिए, वो धर्म आपका भौतिक लाभ के लिए नहीं है। और आगे नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृत। नार्थस्य मतलब न, मतलब नहीं तो, अर्थस्य भौतिक लाभ का, धर्म एकांतस्य धर्म में लगे हुए के लिए, काम यानी इंद्रिय तृप्ति, लाभाय लाभ हेतु ही, यानी सही सही स्मृति ऋषियों द्वारा बताया गया। तो यहाँ पहले क्या बताया कि धर्म किस लिए है, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। धर्म के बाद क्या आता है, अर्थ। तो नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, जो आपके पास अर्थ है, अर्थ का क्या मतलब होता है, भौतिक लाभ, जो भी आपके पास है, मतलब सुंदरता है, ज्ञान है, संतान है, ऐश्वर्य है, धन है, जो भी है आपके पास वो अर्थ है। लेकिन यहाँ पर बताया कि नाथस्य धर्म एकांतस्य, धर्म में लगे हुए जो व्यक्ति, धर्म एकांतस्य यानी कि जो वाकई में धर्म में लगे हुए यानी कि अपने वर्ण आश्रम को सही से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए जो उनका अर्थ है वो कामो लाभाय हिस्मृति, कामो लाभाय के लिए नहीं है यानी कि इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। उसके पास जो भी धन है, जो भी अर्थ है, वो केवल और केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ऐसा ऋषियों के द्वारा बताया गया। यानी कि स्मृति का मतलब होता है जो ऋषियों ने और जो शास्त्रों के मतानुसार जो बताते हैं ना, जैसे ऋषि मुनि, उसको स्मृति कहते हैं। यहाँ पर लास्ट वर्ड है ना, कामोलाभाय स्मृति, कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने धर्म और अर्थ, यहाँ पर दो बातें हुई, वैसे तो चार पुरुषार्थ होते ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आगे काम और मोक्ष को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर धर्म का क्या बताया कि धर्म से या अपवर्ग से, धर्म किस लिए करना है, ताकि अपवर्ग को यानी मोक्ष को प्राप्त करो। नार्थो थायोप कल्पते, धर्म इसलिए नहीं करना है कि आप धर्म करो कि भाई मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ उसकी बदली में मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो, इसलिए नहीं करते। क्यों करते, ताकि मोक्ष प्राप्त हो। और नार्थस्य धर्म एकांतस्य, वो जो वाकई में भक्ति में लगे हुए उनका जो अर्थ है वो कामो लाभाय हिस्मृत, कामो लाभाय के लिए नहीं यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, ऐसा ऋषियों ने कहा। अनुवाद देखिए, सारी वृत्तियां निश्चय ही परम मोक्ष के लिए हैं, उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति यानी धर्म में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग ना करें। अब धर्म और अर्थ समझ में आ गया ना, धर्म किस लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं यानी कि भौतिक वासनाएं पूरी करने के लिए नहीं। और काम किस लिए, सॉरी अर्थ किसके लिए, अर्थ वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है बल्कि वो किस लिए है, ताकि आप धर्म कर सको। आगे अभी जो 10 श्लोक है उसको मेरे साथ रिसाइट कीजिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञास्या नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश चेह कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश चेह कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येह कर्मभिहि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येह कर्मभिहि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येह कर्मभिहि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येह कर्मभिहि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येह कर्मभिहि। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्येह कर्मभिहि। कामस्य, अब देखो धर्म और अर्थ हो गए ना, अब थर्ड नंबर पे है काम। तो काम किस लिए है, यहाँ पर बताया कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, वो काम जैसे इच्छा है, इच्छाएं इसलिए नहीं करनी है कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे आज मनुष्य की इच्छाएं कितनी बढ़ गई हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हालांकि वो भौतिक जीवन को, इस चमड़े को संभाल के रखने के लिए ये वो सब चीजें और इतनी सारी अपनी आवश्यकताएं जीव ने बढ़ा दी हैं, इसकी कोई वास्तविक उसका कोई उपयोग नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं है काम। क्या लाभ है फिर? इच्छा कितनी है? लाभो जीवे तयावता। देखिए अच्छा, देखिए कामस्य यानी इच्छाओं का न नहीं इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति इच्छाओं का या काम का यह मकसद नहीं है कि इच्छाएं बढ़ाते रहें। क्या है? लाभो जीवे तयावता। लाभो मतलब लाभ, जीवे तो मतलब आत्म संरक्षण, बस जी सके बंदा, यावता जितना, इतना काम इतना करना है, यानी काम इच्छा, ठीक है, इच्छा इतनी करनी है, लाभो जीवे तयावता, बस आप जी सको, मनुष्य जी सके इतना ही उसको है ना, आहार उतना ही, निद्रा उतना ही, भय उतना ही, काम वासना, बस ये कि आप अपने इस शरीर को बना सको, बस ये शरीर जो है वो टिक सके। इच्छा केवल इतनी होनी चाहिए कि ये शरीर जी सके, आप जी सको, लेकिन इतना नहीं है, इच्छाओं को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि ना आपका धर्म सही हो रहा है, ना अर्थ सही हो रहा है, ना काम सही हो रहा है, और ना ही कभी मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसे नहीं, वास्तव में जीव, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद भगवद गीता में 3.37 में भगवान बहुत सुंदर बताते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु है काम। जो काम है ना, जो इच्छाएं हैं, उसी से ही सारा आपकी पतन, आपका पतन स्टार्ट होता है, क्योंकि काम से क्रोध होता है, क्रोध से क्रोधाधवती सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्राणश्यति। जो कुछ भी हो रहा है वो काम से हो रहा है। भगवान कहते हैं महाशनो महापापमा विद्धयेन मेहं वैरेणम। यदि आप वाकई में अपने किसी दुश्मन के विषय में जानना चाहते हो ना कि आपका नित्य वैरेणम, वैरेणम का मतलब होता है सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है ना, तो काम है आपका। अब काम को हम संपूर्णतया अपने अंदर से समाप्त नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब तक यह इंद्रियां हैं तब तक इंद्रियों के पालन भी हमें करना है, इंद्रियों, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अंदर है तो काम आवश्यक है, लेकिन काम कितना करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक बढ़ गया तो भगवान कहते हैं वैरेणम, ये आपका वास्तव में इतना बड़ा दुश्मन है और हम इसको अपने हृदय में जगह देकर बैठे हैं। आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है जो सदैव आपको हराने के लिए चालबाजियां करता रहता है, और उसको आप अपने ही घर पे या अपने ही फैक्ट्री में उसको है ना सर्वेंट रख दो, या फिर उसको अपने ही साथ लगा दो कि आज हम दोनों मिलके कार्य करेंगे, तो कितना तुम्हें तबाह कर देगा, वो अंदर ही अंदर खोखला कर देगा, पता ही नहीं चलेगा, पूरा जायदाद वगैरह सब आपकी दिलेगा ना अगर कोई दुश्मन होगा तो। और इतना बड़ा दुश्मन, इसके लिए भगवान ने लिख कर दे दिया विद्धयेन मेह वैरेणम, तुम जान लो अर्जुन सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा काम है, और उस काम यानी वासना इच्छाओं को हम अपने हृदय में जगा दे रखें, और फिर बोलते हैं भगवान हृदय में आते नहीं है, भगवान की स्मृति नहीं होती है, जब हम जप करते हैं तो भगवान की ओर हमारा आकर्षण नहीं होता, कैसे होगा? उस काम ने, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उसने पूरे हृदय पर कब्जा करके रखा हुआ है, फिर कोई भी भगवान की स्मृति या अच्छा विचार आने नहीं देता वो। तो यहाँ पर बताया जाता है कि काम का उपयोग किधर तक करना है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, काम इतना नहीं कि अपनी इंद्रियों को ही पालित पोषित करते रहो, बस ये चाहिए ये चाहिए, ऐसे नहीं। लाभो जीवे तयावता, केवल जीवित रह सके, बस बंदा जी सके उतनी इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि फिर इतनी तरीके से, यानी कि इतना लो कैटेगरी का जीना ही क्या, इसके जीने का फायदा ही क्या है, जब कुछ भी इच्छा करने के लिए, अब धर्म करना है मोक्ष के लिए, धर्म भी कोई भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए नहीं करना है, अर्थ कमाना है किसके लिए, धर्म करने के लिए, बस यही करो। और काम किस लिए करना है, काम लाभ जीवे तयावता, काम किसी है खाली जी सके। तो यहाँ पर यह प्रश्न कोई कर सकते, फिर जिए क्यों बंदा, इससे बेहतर है जी नहीं, तो यहाँ पर आपके जीवन जीवन का जीने का वास्तविक लाभ बता रहे हैं कि जिए क्यों। तो लास्ट में कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यह जो तुम्हें शरीर मिला है जिसे बनाए रखने के लिए तुम्हें ये समस्त धर्म अर्थ काम करने होते हैं, उसको बनाए रखने का केवल यही मतलब नहीं है कि बस आप उसको जीते रहो और अच्छी सुविधाएं संसार में प्राप्त करते रहो और फिर स्वर्ग जाओ, वापस से आओ, वापस से कठिन परिश्रम करो और वापस से जाओ, इस तरह ये धर्म नहीं है। इसलिए नहीं आपको ये वृत्तियों का पालन इसलिए नहीं करना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जीवस्य मतलब जीव का तत्व यानी परम सत्य की जिज्ञासा यानी पूछताछ या उत्कंठा। ये जो तुम्हें जीवन मिला है ना वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव को इसलिए जीना है क्योंकि उसे तत्व जिज्ञासा करनी है, वास्तविक अब क्या है, किसकी ओर जाना है। तत्व की बहुत बहुत मतलब होते हैं। तत्व का मतलब होता है सार, तत्व का मतलब होता है सत्य, असलियत, जो रियलिटी है ना, वास्तविक स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, इन सब का जो आश्रय है, जो कुछ भी संसार में है वो सब किस पर टिका हुआ है, उन्हीं की सत्ता पर, सबकी सत्ता है पर वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो है तत्व। तो उस तत्व को, उस सत्ता को, उस परम सत्य को जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा जो है वही वास्तव में जीव के जीने का परम लाभ है। और आगे बता दिया एकदम क्लियर स्टेटमेंट, नाथो यह कर्म भी, ना मतलब नहीं, अर्थ मतलब अंत लक्ष्य, चाहिए यह अन्य, अन्य मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त को किसके अतिरिक्त, कि तत्व जिज्ञासा के अतिरिक्त अन्य कर्म भी, और कोई लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए जीने का। मनुष्य के जीने का एक ही लाभ है कि वो तत्व जिज्ञासा करे, नार्थो यस्य कर्म भी, इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आज हमें सुत गोस्वामी मनुष्य की जीवन की जो चार पुरुषार्थ है ना उनके विषय में बता रहे हैं। मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष का अर्थ, यानी जो मनुष्य, पुरुष माना मनुष्य, मनुष्य का वास्तविक लाभ, कि जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं वो अपने इस जीवन में उसको करने होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ये किस लिए कर, अब ये क्यों, क्योंकि देखो पहले वाला जो श्लोक था ना जो हमने कल पढ़ा था, क्या था, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुयह नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म स्वनिष्ठित यानी कि जैसे चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, यदि इनको ठीक ठीक से पालन किया जाए तो वास्तव में भगवान के कथाओं में, भगवान के चरणों में हमारी रति लगती है। क्योंकि अच्छे तरीके से जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे ना, जैसे ब्रह्मचर्य अपना धर्म पालन करेगा, गृहस्थ अपना धर्म पालन करेगा, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ऑटोमेटिकली भगवान के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी और भगवान की कथाएं श्रवण करने में आकर्षण उत्पन्न होगा। और लेकिन यदि नहीं हो रहा है, यानी कि वैसे तो होता है परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, हो सकता है कि कोई है ना धर्म करते 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 अपने है ना उसका वर्णाश्रम धर्म का पालन करे लेकिन फिर भी भगवान के चरणों में, भगवान की ओर उसका कोई आकर्षण उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी वो धर्म तो कर रहा है ना। तो सूची ने कहा कि अगर रति नहीं लगती है, नोत्पाद ये यदि रतिम, अगर नहीं लगती है तो फिर फायदा क्या है, तो कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया, धर्म सुनिश्चित है पुंसाम विश्वक सेन कथा सु नोत्पाद ये दिया तिरतिम श्रम एव केवल। तो अगर वो धर्म कर रहा है तो ऐसा धर्म केवल लेबर मात्र है, केवल श्रम है ना, कोई फायदा ही नहीं है उसका कि आप लेबर कर रहे हो बट आपको सैलरी नहीं मिल रही। कोई भी धर्म का पालन आप जो भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसका रिजल्ट क्या है, उसका फल क्या है कि भगवान की कथा में आपकी रति लगे, अगर नहीं लगी तो शम एव ही केवलम। तो यहाँ पर सोनिक आदि ऋषि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अरे धर्म आदि के विषय में आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि चलो ठीक है भगवान की कथा में रति नहीं लग रही वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जितना भी धर्म कर रहे हैं वो सारा व्यर्थ जाएगा। अगर किसी को नहीं लग रहा है, मतलब किसी को अगर साधु संग नहीं मिल रहा है लेकिन वो अपने धर्म का पूरा पूरा सही सही आचरण कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है और कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है, कोई कोई लोग बोलते ना कि है ना ये तो भी अच्छा, फिर भी है ना उन लोग से तो अच्छे ना जो चोरी कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये तो फिर भी लगे हुए ना किसी न किसी धर्म में, अपना कार्य तो सही से कर रहे हैं ना, उनसे तो अच्छे, भले उनसे अच्छे हैं लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है कि आपको ये नहीं देखना है मैं किनसे अच्छा हूँ क्या किनसे नहीं अच्छा हूँ, आपको ये देखना है कि आपको ये जो जीवन मिला है उसका लाभ आपको आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। जैसे एक क्लास में एक बच्चा है ना समझो, उसने ना वो फेल हो गया, ठीक है वो फेल हो गया, उसने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं उठाए अच्छे, उसको बहुत कम मार्क्स मिले। लेकिन दूसरा बच्चा है उसने बिल्कुल जस्ट पासिंग मार्क्स उठाए, जस्ट खाली मतलब एक दो नंबर से पास हो गया, तो उसकी माँ बोले खुश हो जाए कि चलो ठीक है फेल होने से तो बच गया। अरे बाबा फेल होने से तो बच गया लेकिन ये क्लास में पढ़ रहा है और इसको सिर्फ दो मार्क्स से पास हुआ है, अगर और भी ना थोड़ा और तेज कर सकता है, मतलब उसको वो लोग जो फर्स्ट आ रहे हैं जो 90% दे रहे हैं या 99% दे रहे हैं उनसे तो ये बहुत कम जा रहा है ना, इसको बहुत आगे बढ़ना है। ये मार्क्स ही खाली ये इसका मतलब ये नहीं है कि, या फिर ऐसा कि वो फेल होने वाले मार्क्स, वो दोनों ही बच्चे फेल हो गए और जिसने एक ने फेल हुए उसने 10 उठाए और दूसरे 12 उठाए, लेकिन वो फिर भी खुश हो रहा है कि चलो ठीक है फेल तो हुआ लेकिन तुमसे तो आगे बढ़ गया। अरे बाबा फेल तो हुए हो ना, तुम्हें आगे बढ़ना था फेल नहीं होना था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम किससे बेहतर हैं, ये नहीं देखते कि वास्तविक लाभ मिल रहा है नहीं या नहीं मिल रहा है जीवन का। तो सूत गोस्वामी से अगर सोनिक आदि ऋषि बोले कि धर्म के विषय में आप ऐसे क्यों कह रहे हो, तो यहाँ पर आज हमें धर्म की वास्तविकता बता रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य धर्म जो है उसमें मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ है, कौन कौन से है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म जो है वो यहाँ पर साफ साफ बताया गया धर्म से या अपवर्ग से। अब अपवर्ग से जो है वो श्री प्रभुपाद जी उसको, अपवर्ग का मतलब होता है कि मोक्ष, और श्री प्रभुपाद जी जो संस्कृत टीका है उसमें बहुत ही सुंदर अपवर्ग के विषय में बता रहे हैं। उसको पहले पवर्ग से बताते, पवर्ग किसको बोलते जानते हैं आप, जैसे हिंदी जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि उसमें वर्ग होते हैं, क वर्ग प वर्ग त वर्ग, जैसे क ख घ घ ङ, ये पांच वर्ड्स का होता है एक वर्ग होता है, फिर त थ ध ध न, इस तरह से वर्ग होते हैं, उस तरह से इसको बोलते हैं त वर्ग प वर्ग क वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प वर्ग या अपवर्ग, ठीक है अपवर्ग को का मतलब होता है मोक्ष और वो प वर्ग का अपोजिट है। अब प वर्ग क्या है तो संस्कृत की टीका में इसे बताया जाता है, प से क्या आता है परिश्रम, यानी कि ये मनुष्य जीवन में ये कंटिन्यूस ये प वर्ग ही चलता रहता है, जब तक हम संसार में रहते हैं भौतिक जितने भी लोक हैं उसमें ये प वर्ग होता है, लेकिन जो भगवान का आध्यात्मिक लोक होता है वो अपवर्ग होता है। अब उनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि आप भगवान का दाम भौतिक जितने भी लोग हैं उनसे बिल्कुल अपोजिट है, पवर्ग है बाकी सारे लोग और भगवान का दाम अपवर्ग है। तो पवर्ग और अपवर्ग में क्या डिफरेंस है, तो प से आता है परिश्रम, यानी कि जीव जब तक जीता है इस संसार में चाहे किसी भी लोक में हो, स्पेशली जो मृत्यु लोक है, कंटिन्यूअस हम इस मृत्यु लोक से लेंगे इसको क्योंकि कंटिन्यूअस परिश्रम होगा, चाहे आप राजा भी बन जाओ तो भी आपके जीवन में परिश्रम होगा। इवन शास्त्र तो यहाँ तक कह रहा है कि जंगल का राजा शेर भी यदि कोई बन जाता है तो भी उसके जीवन का परिश्रम समाप्त नहीं होता, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा, जो मृग हैं, जो छोटे हिरण वगैरह हैं, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे जंगल का राजा है, चलो अब लाइन में लग जाओ, इसके मुख में लाइन लाइन से प्रवेश करो। नहीं, उसको बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपना शिकार करने के लिए। बहुत बहुत कभी कभी तो इसको कितने कितने दिन तक भूखा रहना पड़ता है। शास्त्र में लिखा है जो मांसाहार करेंगे उन्हें नेक्स्ट जन्म में भूखा मरना पड़ेगा। तो शेर जब बूढ़े हो जाते हैं, जो जाहिर सी बात है जो मांसाहार करते हैं, शास्त्र कहता है उन्हें शेर का जन्म मिलता है, उधर नरक में यातनाएं मिलती है, फिर जन्म भी उसको शेर का ही मिलता है, ताकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति जो मांसाहार है वो करें। और जो बूढ़े हो जाते हैं, शेर हिरण को नहीं पहुंच सकते हैं या फिर अपना शिकार नहीं कर सकते, वो भूखे मर जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर क्या बताया कि परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बहुत परिश्रम। जो भी आप कमा रहे हो, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूस परिश्रम करते रहते हो। हम देखते हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, जो भी लोग हैं, सारी लाइफ परिश्रम करते रहते हैं। और परिश्रम करते 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 भी कुछ इतना परिश्रम करना पड़ता है उसको कि वो उसका जीवन थक जाता है करते करते। और थ से आता है फैन। फैन का मतलब होता है जैसे हम देखते हैं ना भैंस को या फिर बैल, जब बहुत ज्यादा भोजा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसके ऊपर भोजा रखा जाता है, तो उसके मुख से गाज निकलने लगता है, फैन निकलने लगता है। तो मनुष्य भी सारी जीवन में परिश्रम करता रहता है, करता रहता है, और उसके मुख से फैन। और उस इतने परिश्रम के बाद भी उसको प्राप्त क्या होता है, माना बंधन। बंधन जो कुछ उसने इतना परिश्रम करके कमाया है वो केवल और केवल बंधन का कारण बनता है। उसे उससे कोई वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। मतलब अगर विवाह करने के लिए पूरी जिंदगी परिश्रम किया, विवाह के बाद पत्नी का बंधन, पत्नी के बाद बच्चों का बंधन, और जो भी कमाया, जो भी किया, जिससे भी नाता किया, वो सब हमारे बंधन का कारण बनते हैं। और उसके बाद भय से होता है भय। वास्तव में सब इस संसार में हम देखें, हर किसी को किसी न किसी से भय है। मनुष्य को मनुष्य से सबसे ज्यादा भय है। ये जो आदि भौतिक जो रोग है ना, ये भय का कारण है, क्योंकि मनुष्य इतना डरता। इवन जो हमारे मित्र होते हैं या जो जिनसे हम अपनी सीक्रेट शेयर करते हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा भय होता है। जो सबसे जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, शेयर करते हैं, और फिर वो उनसे इसलिए डर लगता है कि कहीं मैं इससे अगर नाराज हो गया तो फिर ये मेरे सीक्रेट जो है वो सबको बता देंगे और मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यानी कि किसी पे भरोसा नहीं है, वो बता रहे हैं टाइम पीरियड के लिए, अपना मन समझ रहे हैं, लेकिन किसी वो शत्रुओं से जो भय है, आतंकवादियों से जो भय है, वो तो एक है ही है, बट किसी से भी सेफ नहीं है बंदा। पत्नी पति से डरती है और पति पत्नी से, संतान माता से डरती है तो माता संतान से भी डरती है। तो ये ना भय लगा रहा है, हम उसको बहुत सूक्ष्म रूप में लेते हैं, उसको नहीं करते हैं। यानी कि अपने अपनों से भय होता है, कुत्ते को कुत्ते से भय होता है कि वो मेरे, उसने देख लिया तो मेरा आहार ले लेगा। पंछी दो कौवे झगड़ते हैं कि मैं लेकर आया हूँ और मुझसे ले रहे हो। तो संसार में भय बना रहता है। और ऐसे करते करते, यानी पहले तो उसने ढेर सारा परिश्रम किया जीव मात्र ने, चाहे वो मनुष्य हो या कोई और प्राणी, कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत मेहनत की, इतना परिश्रम कि उसके मुख से फैन निकल जाता है फल से, और उसके बाद भी कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं, केवल बंधन। और उसके बाद वो प्राप्त जो हो गया उसको, चाहे इतनी सारी मेहनत के बाद जो भी प्राप्त हुआ वो उसके भय का कारण बना। और उसके बाद ऐसे ही जीवन जीते 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 एक दिन माँ से मृत्यु आ जाती है। मृत्यु का क्या मतलब होता है, भगवान भगवद गीता में मृत्यु के विषय में बहुत सुंदर बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरस्यास्मि। भगवान कहते हैं मृत्यु का मतलब होता है जो आपसे सब कुछ छीन के ले जाए, आपके पास कुछ न बचे। जो आज तक आपने बैंक बैलेंस बनाया है, जो मित्र है, जो घर है, गाड़ी है, वो तो सब ले ही जाएगा। जो लालित पालित किया हुआ ये जो देह है, जिसके लिए सारी जिंदगी परिश्रम करते रहते हो, वो देह भी तुमसे वो मृत्यु छीन लेती है। तो मृत्यु, माँ से मृत्यु, तो ये माँ जो है वो इस भौतिक जगत का है कि इस भौतिक जगत में जो भी जीव आता है उसको ये चार ये पांच चीजें ये करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, भय होता है, बंधन होता है, लास्ट में मृत्यु आ जाती है। लेकिन अपवर्ग का क्या मतलब होता है? जो इस पवर्ग वाले जगत से एकदम अपोजिट हो, बिल्कुल उसके अंदर ना मृत्यु हो, उसके अंदर ना परिश्रम हो, ना इतना परिश्रम कि हम थक जाएं, ना किसी चीज का बंधन हो, ना किसी शय का भय हो, ना ही मृत्यु हो, ऐसा भगवान का धाम है। तो वास्तव में धर्म करने का क्या मतलब है? कि आप अपवर्ग को प्राप्त हो, यानी मोक्ष को प्राप्त हो। धर्म करने का ये कुछ कुछ लोग धर्म क्यों करते हैं? ताकि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। धर्म करने नार्थो थायोपकल्पते, ये संसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है। और नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कि शास्त्र क्या कहता है कि जो आप अर्थ कमाते हो वो किसके लिए है? केवल धर्म करने के लिए। धर्म करने के लिए, यानी कि अगर आप खा भी रहे हो तो ये सोच करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए, मैं इसलिए है ना भोज्य सामग्री लेकर जा रहा हूँ क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो भी कार्य आप कर रहे हो, मैं संतान उत्पत्ति इसलिए की है ताकि वो भगवान की भक्ति करे, मैंने जो भी आज कोई भी कार्य आज तक किए हैं वो केवल और केवल इसलिए कि वो मुझे भक्ति में उन्नति करा सके। तो वास्तव में काम का क्या अर्थ है? कि वो उसके जरिए आपका उसके जरिए आप धर्म कर सको। कामो लाभाय स्मृतः, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से श्लोक को समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति पूर्ण ज्ञान तथा संसार से विरक्ति द्वारा स्वतः संपन्न होती है। ये कब बताया? पता है 1.2.7 श्लोक नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा? वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजित जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम्। कि भगवान की शुद्ध भक्ति पूर्ण ज्ञान तथा संसार से विरक्ति द्वारा स्वतः संपन्न होती। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के लिए। वैसे तो धर्म करने से ज्ञान और वैराग्य संपूर्ण हृदय में आ ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म किसके कर रहे हैं? केवल और केवल भौतिक लाभ करने के लिए। संसार के किसी भी भाग में सामान्य व्यक्ति की यही प्रवृत्ति होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले में कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। आज तो लोग भागवतम कथा करते हैं उसके बदले में भी उसको भौतिक लाभ चाहिए होता है। वास्तव में यह शास्त्र विधि नहीं है, बल्कि श्री प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं ऐसे लोग के मुख से सुनना भी नहीं चाहिए जो केवल भौतिक लाभ के लिए श्रवण करा रहे हैं आपको यहाँ पर। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे लोग के मन में यही बात आ रही है कि आप जो भी कार्य करोगे उसका आपको भौतिक कोई ना कोई लाभ प्राप्त होना चाहिए। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में समस्त धार्मिक कृतियों के लिए भौतिक लाभ का लाभ दिया गया है, लोभ दिया गया। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने ये भी बता दिया कि अगर हम वैदिक साहित्य धर्म जो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं ना तो भी भौतिक लोभ दिया जाता है। जैसे हम लोग है ना एकादशी की कथा भी पढ़ते हैं ना, उसमें भी लिखा हुआ है ये आप पुत्र प्राप्त करोगे, इससे आप धन प्राप्त करोगे, ये करोगे। वास्तव में धर्म का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना। आप कोई भी धर्म कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आपको भौतिक लाभ मिले, लेकिन मनुष्य की ऐसी सोच हो गई है कि जब तक उसको भौतिक लाभ का प्रलोभन नहीं दिया जाता है, उसको लालच नहीं दी जाती, तब तक वो धर्म करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। इसे शास्त्र में ऐसी लालच दी जाती है, लोभ प्रलोभ दिया जाता है। और अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के लोभों अथवा आशीर्वादों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो फिर ऐसी तथाकथित धार्मिक लोग भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, वैसे तो ज्यादातर लोग इन्हीं लोभों को देखकर ही धर्म करते हैं। आप धर्म करोगे पहले पूछेंगे भाई ये कार्य करने से मुझे फायदा क्या होगा? अगर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, किसी को बोलो आपको भगवान का नाम लेना है, तुम लोग क्या फायदा भगवान का नाम? अरे बाबा तुमने जन्म लिया है तो भगवान की इतनी सारी तुमने कृपाएं लूटी हैं, इतना सब भगवान निसर्ग से प्रकृति से तुम ले रहे हो, उस भगवान का शुक्र करने के लिए तुम उसका नाम ले लो। बोले नहीं, ये तो सब है ना मुझे मिल ही रहा है, एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो फिर उसके लिए भगवान का नाम लूंगा। तो इतना भी लोग को धर्म के प्रति आकर्षण नहीं होता। लोग को किससे किस चीज के प्रति आकर्षित होता है कि मुझे लाभ क्या होगा? अभी यहाँ पर श्री रूपा जी आगे बता रहे हैं कि ये इस तरह क्यों होता है, इसके प्रति आकर्षण क्यों होता है, क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तृप्ति होती है। वास्तव में मनुष्य इतना गिर गया है कि जिस चीज में उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं है उस चीज में उसकी उस चीज की ओर उसका कोई आकर्षण नहीं होता। उसे ऐसा लगता है इससे मेरी कौन सी वासना पूरी होगी, अगर मैं ये कार्य करूंगा उससे मेरी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझा हुआ है, इसीलिए वो हर चीज में प्रलोभ ढूंढता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वृत्तियों के इस चक्कर में तथाकथित धार्मिकता भी आ जाती है। तथाकथित धार्मिकता मतलब जो धर्म करते हैं दिखाने के लिए, या ये प्राप्त हो जाए ये प्राप्त हो जाए, ये धर्म नहीं। वास्तव में भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ चाहते हो। भक्ति का मतलब क्या होता है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हूँ, मुझे उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, ये होती है भक्ति। लेकिन तथागत धार्मिकता क्या होती है कि ये प्राप्त हो ये प्राप्त हो। और आगे श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आ जाती है, जिसके बाद लाभ और लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति समस्त प्रकार के व्यस्त व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। आज तुम्हें जो भी बिजी लग रहे हैं ना कि भाई हमें समय नहीं है, कुछ लोग को बोलो आप माला करो तो बोले माला के लिए समय नहीं मिलता। कुछ लोग को बोलो भाई आप भगवान के नाम का श्रवण भगवदगीता का श्रवण करो, बोले समय नहीं है। तो श्री रूपा जी बोलते हैं जो आपको यहाँ पर व्यस्त लग रहे हैं ना, जो बोलते हैं कि हम बिजी हैं, तो वो क्यों बिजी हैं? केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति की सामग्री को जुटाने के लिए। केवल उनका कार्य यही है कि मैं कैसे अपने और अपनों के इंद्रिय तृप्ति का साधन जुटा सकूं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर बात बता रहे हैं कि किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में सुत्त गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। साफ साफ बताया गया कि कामस्य नेन्द्रिय, ये जो इच्छाएं हैं वो तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। नार्थो, ये जो अर्थ आप जमा कर रहे हो, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी है, वो केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि इसके माध्यम से, जैसे धन है, सुंदरता है, स्वस्थ शरीर है, अच्छी संतान है, पत्नी है, घर है, ये इसलिए आपको मिला है क्योंकि पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे और ये आपको आज सुविधाएं मिली हैं ताकि आप इन सुविधाओं को यूज करके ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम ले सको, है ना। लेकिन आप क्या करते हो, इस सारी सुविधाओं को यूज करके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले सुत गोस्वामी ने इसका निषेध किया है और मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए। आप धर्म कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धर्मस्य या अपवर्ग से, आपको धर्म क्यों करना है? अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए, ना कि धर्मस्य या अपवर्ग से ना तो थायोपकल्पते, यानी कि भौतिक लाभ के लिए नहीं करना है बल्कि अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए धर्म करना है। और आगे ना ही भौतिक लाभ का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए, मतलब नार्थस्य धर्माय कांतस्य, और खाली भौतिक लाभ के लिए ये नहीं करना, बल्कि यहाँ पर साफ साफ लिखा ना ही भौतिक लाभ का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। जो भी आपके पास भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी अर्थ है, उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस प्रकार भौतिक लाभ का सदुपयोग किया जा सकता है उसका वर्णन आगे है। फिर भौतिक लाभ यानी कि जो आपके पास अर्थ है उसका कैसे सदुपयोग करो, काम का कैसे सदुपयोग करो वो आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्य कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति मतलब इच्छा इतनी नहीं करनी है कि केवल केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति करो। लाभो जीवित यावता केवल जीने के लिए कि आप जी सको, इच्छाएं केवल इतनी होनी चाहिए कि जी सको। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं कि बस उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि खाएंगे खाएंगे ये खाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अदर कंट्रीज में जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके। बस जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति बना दिया है, लेकिन शास्त्र कहता है खाने के लिए नहीं जीने के लिए खाया जाता है कि बस खा इसलिए कि मैं जी सकूं, मैं मर ना जाऊं, क्योंकि यदि मैं मर जाऊंगी तो फिर मोक्ष का जो मेरा ये जो मैंने मोक्ष के सफर पे जो कदम रखा है वो मेरा सफर जल्दी पूरा नहीं होगा। तो इस सफर को पूरा करने के लिए मुझे जीना है, तत्व जिज्ञासा के लिए। आगे बताएंगे यहाँ पर कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता केवल जीने के लिए, और जीना किस लिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वास्तव में भगवान को तत्व जो रियलिटी है, जो सार है, जो समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का तत्व है, उस कृष्ण को जानना और उससे प्रेम करना ये है जीवन का लक्ष्य। और नाथो यस्य कर्म भी इसके अतिरिक्त और कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अनुवाद देखिए, जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए, यानी इच्छाएं इतनी नहीं कि केवल इंद्र तृप्ति ही करो। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, केवल किसी के जीवे तजावता स्वस्थ जीवन होगा ताकि मैं अच्छे तरीके से भक्ति कर सकूं। क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। नाथो यस्य कर्म भी, आप कोई भी धर्म करते हो इसके अतिरिक्त उसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर वृत्ति समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्णतया मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलती से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य है, चाहे राजनीति हो या समाज सेवा, परोपकार पर हितकारवाद या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी इंद्रिय तृप्ति का रंग चढ़ा हुआ है। कितनी हीन भावना है कि आप जो भी कार्य करते हो भौतिक सारे कार्यों में केवल इंद्रिय तृप्ति है, और भौतिक कार्यों को छोड़कर आज तो जीव मोक्ष में भी इंद्रिय तृप्ति चाहता है। मोक्ष का क्या मतलब होता है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूप व्यवस्थिता, मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं और वहां पर स्वरूप मेरा क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वहां पर जाकर भगवान की सेवा करूं। लेकिन जीव क्या चाहता है कि मुझे सायुज्य मुक्ति मिल जाए और मैं भगवान बन जाऊं, भगवान के अंदर समाप्त हो जाऊं और भगवान के अंदर प्रवेश कर जाऊं और मैं भगवान ही बन जाऊं। तो फिर ये भी तो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति है, यानी कि यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति का रंग चढ़ा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में नेता अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं, यानी कि वैसे जो राजनीति में नीतिज्ञ जो होते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो आपस में झगड़ते रहते हैं और मतदाता जैसे वोटर्स जो होते हैं आवाम, वो भी तभी उनको है ना वोट देने के लिए एग्री होती है जब वो इस बात का वचन देते हैं कि वो आपकी इंद्रिय तृप्ति कराएंगे। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतोष हो जाते हैं तो वो नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेताओं को मतदाताओं की इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि ना करके उन्हें सदैव निराश करते रहना चाहिए। मतलब अगर जो नेता आते ना वो अगर है ना जो वोटर्स हैं उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते तो वो उनको च्यूज करा देते, पदच्युत करा मतलब उनकी सीट से हटा देते हैं, फिर किसी और को बना देते हैं। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर शिवपा जी बता रहे हैं कि सारे क्षेत्रों में केवल इंद्रिय तृप्ति ही मेन लक्ष्य, इंद्रिय तृप्ति को ही मेन लक्ष्य बना दिया गया है और अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, ये सोचता ही नहीं है कि ये सब प्राप्त होने के बाद भी हम इसी संसार में, इसी प वर्ग में ये गधों और बैलों की तरह से परिश्रम करना पड़ेगा और इसी तरह से हम एक दिन मृत्यु हो जाएगी। भले कितना भी भौतिक लाभ क्यों न प्राप्त हो जाए, गंभीर होना चाहिए अपनी समस्त समस्याओं को, त्रियताप को दूर करने के लिए, लेकिन कोई भी गंभीर नहीं है। और यहाँ तक के मोक्ष मार्ग के गामी यानी मुमुक्षु भी, वे भी परम सत्य के तदाकार होना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिकाधिक आध्यात्मिक हत्या करने के लिए उद्यत रहते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक हत्या बताया गया कि वास्तव में आप आत्मा हो और आपका वास्तविक जो संतोष है वो परमात्मा की सेवा में, लेकिन वो आध्यात्मिक हत्या करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि मैं परमात्मा में मिल जाऊं, यही वो उसी को मुक्ति मानते हैं और यही इंद्रिय तृप्ति है। मुक्ति में भी वो इंद्रिय तृप्ति ही ढूंढते हैं, किंतु भगवान का, भागवत का कहना है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित नहीं रहना है। साफ साफ बताया, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना है तो किस लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए। और इंद्र तृप्ति के लिए जीवित नहीं रहना, इंद्र की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक कि आत्म संरक्षण की आवश्यकता पड़े, केवल जी सको उतना। और इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, यानी कि काम इसलिए नहीं है कि इंद्र तृप्ति करो, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती हैं, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। कुछ विधियां बताई गई हैं कि ना इस तरह से आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो, तो प्रकृति है तो उसको कुछ इच्छाएं हैं, उसकी कुछ जरूरतें होती है और कुछ कुछ जैसे आवश्यकता होती है और कुछ इच्छा होती है। आवश्यकता पूरी करने के लिए मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंद्रियां अनियंत्रित भोग करने के लिए नहीं। उदाहरण विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का संयोग संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में जो विवाह की विधि है उसके विषय में बता रहे हैं कि ये क्यों किया जाता है। इसमें ये इंद्रिय भोग के लिए नहीं किया जा रहा है। विवाह का मतलब ये नहीं है कि आपको यह सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप जब चाहो जैसे चाहो इंद्रिय भोग कर सकते हो, ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता है। स्वेच्छा निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ने के लिए जो विधियां यहाँ पर की जाती हैं, उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप डायरेक्ट से स्वेच्छ निरोध, यानी कि वास्तव में ये है ही नहीं, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं, मूर्ख लोग को ये पता ही नहीं है कि यदि वो परम सत्य की खोज में लगते हैं तो फिर वो एक्सेस कर ही नहीं सकते, मतलब ये मैथुन सुख एक्सेस नहीं कर सकते। उनको तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करना होता है। और आगे उस आगे कहते हैं, परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। उनको इतना कार्य होता है क्योंकि जीवन का लक्ष्य उन्हें पता है क्या, तत्व जिज्ञासा, और जो तत्व जिज्ञासा के लिए निकल जाते हैं वो इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें एक्सेस इंद्रिय तृप्ति के लिए समय ही नहीं होता, उनको उस बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता, उसकी ओर वो आकर्षित होते ही नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत, उनको पता है कि हमारा गोल बहुत ज्यादा अहम है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्हें आकर्षित होता ही नहीं है कोई भी। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। कि जो भी अपराध संसार में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जीव ने इंद्रिय तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन यदि जीव को अपने जीवन का लक्ष्य परम सत्य समझ में आ जाएगा तो फिर प्रत्येक क्षेत्र, जितने भी यहाँ पर क्षेत्र हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज जो है वो जब चरम लक्ष्य बन जाएगी तो समस्त अपराध समाप्त हो जाएंगे। इससे मनुष्य सुखी रहेगा क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कामरत रहेगा, क्योंकि संतुष्ट रहेगा वो। उसे पता है कि मैं उस लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ जो कि परम लक्ष्य है, और अगर उसमें सफलता नहीं भी मिलेगी ना तो भी संतुष्टि तो मिलेगी ही, फिर वो इंद्रिय तृप्ति में कामरत रहेगा। और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे बताई जाएगी कि जीव से तत्व जिज्ञासा, तत्व का संसार में आपको यह जीवन मिला है तत्व जिज्ञासा के लिए, तो वो तत्व क्या है, वो सार क्या है, वो रियलिटी क्या है जिसके ऊपर स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति सब जिसके आश्रय में रहते हैं, वो कौन सी सत्ता है, वो परम सत्य क्या है, उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।